کفن کے مسائل، زندگی میں جو میت کا سرپرست ہو، ٹیک کیئرر، یعنی وہی کفن تیار کرنے کا ذمہ دار ہے. یعنی یہ کوسچن ہو سکتا ہے کہ کفن کون تیار کرے، تو جو ٹیک کیئرر ہے، یعنی باپ ہے اگر بچوں کا، یا اگر بچے ماں باپ کو پال رہے تھے یا ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے، تو وہی ذمہ داری رکھے. کفن صاف ستھرے اور اچھے کپڑے سے بنانا چاہیے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مرنے والے کا ولی اپنے بھائی کے لیے اچھا کفن بنائے. یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح کسی محتاج یا بے سہارا میت کے لیے کفن تیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائیں گے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا حدیث 97 میں، مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے، اور کفن کے لیے سفید کپڑے استعمال کرنے چاہیے. ان سب کی دلیل حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفن دیا گیا، جو سہول بستی میں روئی سے بنی ہوئی، یعنی سہول نام کی ایک بستی تھی، تو وہاں روئی سے، یعنی پیور کاٹن سے بنی ہوئی تھی، اور ان میں نہ کرتا تھا نہ پگڑی تھی. بخاری اور مسلم کی روایت. کیا پتا چلا کہ کفن کے اندر ایک بھی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا. اور اس طرح کا ایک لباس کون سا ہے جو ہم پہنتے ہیں؟ احرام. ابھی ریسنٹلی ہم نے اس پہ ایک لیکچر کیا تھا کہ جس میں احرام کو ہم نے کفن سے ریلیٹ کیا تھا. تو اگر ایک ایسا حج عمرہ کر لیا جائے جس میں ہم سوچ لیں کہ آج ہم نے اپنا کفن پہنا ہے، تو کم از کم احرام اتارنے کے بعد دل کو خوشی تو ہوگی نا کہ ہم ابھی زندہ ہیں. تو ان چیزوں کو فیل کیا کریں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ عورت کے کفن کا 5واں کپڑا وہی ہے جو قمیض کے نیچے رہتا ہے، اس سے عورت کا ستر اور رانیں باندھی جاتی ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. فرق کیا ہے؟ دیکھیے 3 چادریں ہیں نا مرد کی، ایک جسم کے نیچے کے حصے پہ بچھائی جاتی ہے، پوری اس کو باندھ کے اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس کو آپ تہمند کہہ سکتے ہیں مردوں کا، جیسے ہوتا ہے کمر سے تھوڑا نیچے سے شروع کر کے ایک چادر الگ بستر پہ نیچے سب بچھا دی جاتی ہے، صاف بستر ہے. میت کو آپ نہلا رہے ہیں، نہلانے کے بعد جس بیڈ پہ اس کو ڈالنا ہے نا، اس پہ نیچے چادریں بچھا دی جاتی ہیں. ایک نیچے جس میں اس کی ٹانگوں والا حصہ الگ سے ریپ کر دیا جاتا ہے، دوسرا اوپر قمیض، اور قمیض خاص طور پہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ اس کے بیچ میں گلے کی جگہ کاٹ کے کٹ لگا دیا جاتا ہے کہ جس کو پہنانا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اوور آل جو سر سے لے کے پاؤں کو چھپاتا ہے، سمپل ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان چیزوں پہ اتنی اچھی بچی کرنا، کیا لپیٹیں، کدھر کریں کریں، اس سے زیادہ تو زندگی کے ڈریس اپ کو ہمیں پوچھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. عورت کے کپڑے میں 2 چیزیں زیادہ آتی ہیں. ایک اس کے اندر قمیض کے ہوتے ہیں، یعنی عورت کی جب قمیض بنتی ہے نا، تو اس کو بالکل الگ سے پورا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جب اٹھائیں یا لپیٹیں، کبھی کبھی اوپر رضاخ ہو سکتا ہے قبرستان میں لے جائیں تو چادر ہٹ جائے، تو گویا کہ قمیض کی صورت میں بالکل ایک سیدھی سی ہوتی ہے، اور بالکل شمیز جس کو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں نا، سلپ جو ہوتی ہیں، بالکل ایسی سلپ جس کی سائڈیں بھی کھلی ہوں، یہ عورت کی قمیض ہے. گلا کاٹ کے اس کے اندر ایک فرنٹ پہ کٹ لگاتے ہیں، اس کو پہنا کے قمیض کے طور پہ نیچے، اور پھر اوپر چادریں باندھنی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 5ویں جو چادر اس کی ہوتی ہے، وہ اس کے سر کا کپڑا ہوتا ہے، یعنی جو ایک سر پہ ایک دوپٹے کے طور پہ بن جاتی ہے. تو اس طرح سے، یعنی کفن کا جو کپڑا ہے وہ اس کو پہنایا جاتا ہے، پھر اس کے نیچے اگر چاہیں تو ڈوری باندھ. ہمارے یہاں اصل میں ہر چیز کو بہت فنکشنلائز کر دیا جاتا ہے، بالکل سمپل طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ شہید کے لیے نہ کفن ہے نہ غسل، اسی حالت میں اور انہی کپڑوں میں شہید کو دفن کیا جائے گا. یعنی جیسے شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، اسی طرح شہید کو کفن بھی نہیں پہناتے، جو کپڑے پہنا ہوا تھا اسی میں جائے گا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ شہدائے احد نہ غسل دیے گئے، نہ ان پر نماز پڑھی گئی، اور خون آلود کپڑوں میں ان کو دفن کیا گیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، بڑی خوبصورت ہے. رسول اللہ نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی کیا گیا، پھر بھی وہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے سرخ رنگ کا خون بہ رہا ہوگا جس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو گویا کہ شہید کے لیے ساری باتیں ایگزمپٹیڈ ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، سم ٹائم بہت زیادہ میتیں ہو جاتی ہیں، تو میتیں زیادہ ہوں اور کفن کم ہو، آپ کو مجھے تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے اپنے پہننے کے کپڑوں میں کوئی کمی نہیں، ہمارے تو کفن بھی کئی قسم کے ہوں گے، لیکن میں نے کبھی ابھی تک کسی کو برانڈڈ کفن نہیں کہتے ہوئے سنا کہ ہم فلاں کمپنی کا اور فلاں کا کفن رکھ لیں. نہ تو کفن پہ موتی ہیں، نہ ستارے، نہ دبکا، نہ سلمی، نہ کچھ بھی. प्लेन कपड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा उस पे। ज़िंदगी में अल्लाह ने अगर हमें इतने खूबसूरत कपड़े और पहनने ओढ़ने के मौके दिए हैं, तो अगर हम इसको अल्लाह की रज़ा के साथ पहनते हैं तो ये अल्लाह की नेमत है। तो कफ़न तो बिल्कुल सादा होगा, तो अगर कोई ना, तो फिर एक कफ़न में ज़्यादा लोग भी दफनाए जा सकते हैं। देखिए, इस्लाम मेरे और आप जैसे बड़े पौश लोगों के लिए नहीं है कि जिनके घर में हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। देहातियों, जंगलों में और बस्तियों में, गांव, देहात, शहरों में बसने वाले हर एक का दीन है, तो वेरी फ्लेक्सिबल। जो मैं आपको ये पढ़ाते हुए बात देना चाह रही हूँ ना, वो ये दे रही हूँ कि टेक इट ईजी। कफन कैसा ये है, इन चीज़ों में हम इंची स्टेप लेके फंस जाते हैं। कट कितना हो, इतना ना उतना, और ज़िंदगी गुजारने में हम कहते हैं हमारी मर्ज़ी, इट्स आवर लाइफ स्टाइल, इट्स माई स्टाइल। ठीक है, तो ज़्यादा क्यूरियस हो जाएं जो अल्लाह के काम आता है ज़िंदगी में, उसको मानने में। फिर इसी तरह एहराम की हालत में अगर कोई फौत हो तो क्या होता है, ऐसे शख्स को मुहरिम कहते हैं, यानी जो एहराम की हालत में मरे तो उसको एहराम की उन्हीं चादरों में कफन दिया जाएगा जिसमें वो फौत हुए। और मुहरिम और शहीद के अलावा बाकी मैयतों पर गुस्ल और कफन के बाद खुशबू लगाई जाएगी, यानी शहीद को और अहराम की हालत में मरने वाले के कफन पर खुशबू नहीं लगाई जाएगी। इसकी वजह आपको पता है ना कि हालत अहराम में खुशबू का इस्तेमाल मना होता है, पहले खुशबू लगा के फिर अहराम पहनते हैं, लेकिन अहराम पहनने के बाद नहीं। तो यही चीज़ यहाँ भी रखी जाएगी, शायद जिस्म से ही अल्लाह ऐसी खुशबू निकालता होगा उनके के जिनको इन खुशबुओं की ज़रूरत ही नहीं रहती। हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से, कहते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया, मुहरिम को अहराम की चादरों ही में पानी और बेरी के पत्तों से गुसल दो और अहराम की चादरों में कफन दो, इसे खुशबू लगाओ ना इसका सर ढांपो, क्योंकि मुहरम क़यामत के दिन हालत अहराम ही में उठाया जाएगा। यानी मुहरम जो है वो अहराम की हालत में उठाया जाएगा, ये निसाई की रिवायत है। अच्छा, एक दफ़ा तो अहराम बांधते वक्त एहसास होता है, आप सबको भी फीलिंग कभी आई होंगी, औरतों का अहराम तो वैसे ही नॉर्मल होता है, लेकिन मर्दों को अहराम में देखकर एक दफ़ा ज़रूर फीलिंग आती है कि ये कपड़े पहने, अब एक वक्त आना है कि यही कपड़े पहनने हैं। अच्छा, कुछ बिदात है हमारे जहनों में इस तरह की कि कफन को जमजम के पानी से धो लें, ये वो, तो या किसी के कपड़े से, तो समझ लीजिए किसी नबी, वली या बुजुर्ग का लिबास अगर कफन के तौर पे पहना भी दिया जाए तो मरने वाले को अजाब से नहीं बचा सकता। हदीस सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, बहुत दिल सोजी वाली रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से, कहते हैं कि जब अब्दुल्ला का वालिद यानी अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था फौत हुआ, तो अब्दुल्ला जो बड़े मुखलिस सहाबी थे, ये भी अल्लाह की देन, बाप मुनाफिक और बेटा मुखलिस मोमिन, जब ये अल्लाह के नबी की खिदमत में आए, अर्ज़ किया कि मुझे अपनी कमीज़ दे दीजिए, मैं इसमें अपने बाप को कफन दूंगा और इसके लिए आप दुआ फरमाइए और इसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए। अब जिन लोगों ने सीरत पढ़ी है वो अब्दुल्ला बिन उबई के किरदार से खूब वाकिफ़ है, तफसीर में भी आता है और सीरत में भी आता है, हर मौके पे इस शख्स ने अल्लाह के नबी को दुख दिया, आपकी प्यारी बीवी पे तोहमत लगाई, 1 महीने तक आपका घर बिगड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लम ने अपनी कमीज़ उतार के अब्दुल्ला को दी कि जाओ बाप को पहना दो, कहा जब कफन तैयार हो जाए तो मुझे बताना, जब आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने का इरादा फरमा रहे थे तो हजरत उमर ने आपको रोका, अल्लाह के नबी आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, यानी इसके निफाक में तो कोई शक नहीं, तो आपने कहा हाँ, मुझे 2 बातों का इख्तियार दिया गया कि बख्शिश की दुआ करूं या ना करूं। ये सूरह तौबा की एक आयत है कि वइन तस्तगफिर लहुम व लम तस्तगफिर लहुम, तुम इनकी बख्शिश की दुआ कर लो या ना करो, लेकिन अल्लाह इनको नहीं माफ़ करेगा। तो अल्लाह के नबी कह रहे मुझे मना तो नहीं किया गया ना, तो मैं दुआ मांगूंगा। कितना नरम दिल था आपका लोगों के लिए, हमें तो कोई एक बात कह दे हम कहते हैं ना इसकी शक्ल देखेंगे ना इसके घर जाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी अपनी ज़ात के लिए कभी नहीं ऐसा करते थे। बहरहाल आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, जिस पर फिर ये आयत नाजिल हो गई कि अब इसके बाद कोई मुनाफिक अगर मरेगा तो ना तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी ना उसके कब्र पर खड़े होकर आप मगफरत की दुआ करें। इसके बाद फिर आपने मुनाफिकों की नमाज जनाजा पढ़ानी छोड़ दी, ये तिरमिज़ी की रिवायत है। इससे क्या पता चलता है कि नबी के कुर्ते में मदफून है। देखिए, जिस शख्स का नाम यहाँ आया ना अब्दुल्ला बिन उबई, नंबर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते में दफन है, नंबर दो अल्लाह के नबी ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, तीसरी बात कहते हैं कि इसके कब्र में उतारने के वक्त नबी सल्लम खुद मौजूद थे, अगली बात है कि इसके ऊपर अल्लाह के नबी ने अपना लाबे दहन लगाया, लेकिन इसके बावजूद इस शख्स की बख्शिश नहीं होगी। हम और आप क्या कहते हैं, जमजम में भिगो के कफन को ले आओ, ऐसी कोई बात नहीं है, पानी है वो उड़ गया, आप जमजम के पानी से गुसल दे दें किसी को, अगर उसके अपने अमल ठीक नहीं है तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसी तरफ देखिए कि कफन बनाने, कब्र खोदने और गुसल देने की उजरत मैयत के माल से अदा करनी जायज़ है। इसके बाद कर्ज अदा करना चाहिए, फिर वसीयत पूरी करें। यानी अब मरने वाले का जो माल है उसको क्या करें, सबसे पहले कफन दफन का खर्चा। कोई और देना चाहे तो दे सकता है, कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद गुसल देने वाला अगर उजरत लेना चाहे तो भी ले सकता है। और इसके बाद कर्ज और वसीयत, और कर्ज पे बहुत तफसील से बात कर चुके। तो हज़रत इब्राहिम कहते हैं रहमहुल्ला, मैयत के माल से पहले कफन बनाया जाए, फिर कर्ज अदा किया जाए, फिर वसीयत पूरी की जाए। सुफियान कहते हैं कि कब्र खोदने और गुसल देने की उजरत कफन बनाने में शामिल है। ये बुखारी की रिवायत है, यानी ये एक साइड इश्यूज़ हैं कि उसके पैसों में से ये चीज़ें दी जाती हैं। तो ये थी चंद चीज़ें कफन के बारे में। बस आखिरी टॉपिक चंद मिनट्स का, कि क्या हम कफन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं आज अपने माशरे में कि जो नबी सल्लम ने नहीं की। तो हर टॉपिक की तरह आखिरी टॉपिक है कि कफन के मुतल्लिक वो काम जो अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। या मैं फिर अपनी बहनों से यही कहूँगी कि थोड़े गौर से सुनिए कि अब जो बातें होंगी ये नहीं है, ये ना कि एक हमने पढ़ लिया था। क्या चीज़ें नहीं साबित? नंबर एक, कफन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना, कलमा तैयबा, अहदनामा, कुरान की कोई आयत या अहले बैत वगैरह के नाम लिखना। अक्सर देखिए मैयतों पे जो चादरें डालते हैं उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, प्लेन चादर होनी चाहिए, नथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह दूसरी चीज़ जो साबित नहीं है, अलहदा कपड़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कलमा तैयबा, अहदनामा या कुरान की आयत या अहले बैत के नाम लिखकर मैयत के सीने पर रखना। कुछ कल्चर ऐसे हैं कि मैयत के सीने पर ये सारे नाम लिख के रखते हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा? ऊपर रखने से क्या होगा, अंदर की चीज़ें तो अब सील हो गई। फिर इसी तरह कफन आबे जमजम से भिगोना, इसकी कोई साबित नहीं है सनद। बुज़ुर्गों के लिबास में कफन देना, बाज़ अपने पीरों फ़कीरों के उतरे हुए कपड़ों में कफन देते हैं, इसकी भी इजाज़त नहीं है। फिर उसके बाद अकीदा क्या रखना, कि ये सारे काम करने से या कोई एक काम करने से मैयत के अजाब में कमी होगी, नहीं होगी। अब्दुल्ला बिन उबई की मिसाल हम सबके सामने है। और छोटे बच्चों को कफन की बजाय नए कपड़े पहना कर उनमें दफन करना। बाज़ ख़ानदानों में ऐसा होता है कि बच्चे को वाइट कफन नहीं देते, मनहूस समझते हैं और उनको दुख होता है, तो उनको फिर नए जोड़े पहनाते हैं। इसी तरह फौतशुदा दूल्हा या दुल्हन को कफन की बजाय शादी के कपड़े या सेहरा वगैरह पहनाकर दफन करना, इस्लाम में नहीं है ऐसा। अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसा सदमा सहना पड़े कि शादी हुई और साथ ही डेथ हो गई, लेकिन ऐसे कपड़े नहीं पहना। ये तो आपको पता है कि इंग्लिश है, अमेरिकन कह लें कल्चर है, वो डेड बॉडी का पूरा मेकअप करते हैं। हम लोग अमेरिका में जहाँ रहते थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए रास्ते में फ्यूनरल हाउस आता था, तो मैंने इनसे पूछा कि इतना बड़ा क्यों है, बहुत सजी सजे बिंगले। कहते इसके अंदर पूरे पॉर्टलर्स होते हैं, मेकअप करते हैं, इवन उसके स्किन के अंदर से बाल उतारते हैं, उनके स्टेन्स निकाल के बिल्कुल उसको डमी पपिट की शक्ल बना के फिर फुल मेकअप करके कई दिन तक रखते हैं, लोग आते हैं, फिर उसके बाद दफन करते हैं। तो जो चला गया वो तो चला गया, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो ये थे वो टॉपिक जिनका ताल्लुक दफन से और कफन से और गुसल से था। इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक अब जनाजे के मसाइल से। हम इससे भी बहुत नाशना है, हत्ता कि जब हम खाना काबा में जाते हैं और वहाँ नमाज जनाजा पढ़नी पड़ती है तो कई बहनों को आ ही नहीं रही होती। तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम इससे रेलेवेंट काफ़ी चीज़ें देखेंगे।